आयत नंबर 58 से, या अय्युहल्लज़ीन आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीन मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीन लम यबलुगुल खुलुम मिनकुम 3 मरात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے ایمان والو، اذن طلب کیا کریں تم سے گھروں میں داخل ہوتے وقت تمہارے غلام اور وہ لڑکے جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، تم میں سے 3 مرتبہ نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے ان اوقات کے علاوہ، کثرت سے آنا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس. یوں صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. پھر اسی بات کی کنٹینویشن اگلی آیت میں بھی ہے، پھر اس میں ہم اکٹھے بات کر لیں گے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے حد بلوغت کو پہنچ جائیں، پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جائیں، تو کیا ہو؟ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اذن طلب کیا کرے جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، یوں اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام کو، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر ایک دوسرے سے اجازت لینے دینے کی بات کی ہے. ہم پیچھے دیکھ چکے آیت نمبر 27, 28 اور 29 اسی صورت کی، جس میں احکام استیذان یعنی گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کے اصول بتائے گئے. وہ اجازت تھی گھر سے باہر سے آنے کی، یعنی باہر کا کوئی شخص جب گھروں میں آنے لگے تو کیا کرے. لیکن جیسا کہ گھروں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ گھر کے اندر رہنے والوں میں بھی بعض دفعہ ایک دوسرے سے اجازت طلب کرنے کا رواج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک جو بہت بڑا اسلام کا ہدف ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے، بلکہ اس آیت کے ساتھ ہی وہ لکھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا اختلاط ہو کہ ان کے دلوں میں ان کی رسپیکٹ ختم ہو جائے. اسلام کا اصول کیا ہے کہ برائی پیدا ہونے سے پہلے وہ حالات ہی مار دو، ختم کر دو کہ جس میں برائی پیدا ہو جائے. اس کے برعکس ہم پیچھے بڑی تفصیل سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ ویسٹرن سٹائلز میں کیا ہے کہ کھائی تو کھود ہی رکھو، لیکن اس کے نیچے ایک ایمبولینس کھڑی کر دو اور ہڈیاں جوڑنے کا ہاسپٹل بنا دو. پہلے سارے وہ حالات بنائے جاتے ہیں جس سے بدکاری، برائی، زنا عام ہو جائے، پھر بعد میں اس کی روک تھام کے لیے ادارے اور سینٹرز بنائے جاتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ محرم رشتہ داروں، خاص طور پہ ماں باپ اور بچوں کا آپس میں بہت نپت الا تعلق ہو. ماں باپ کی پوشیدہ باتوں کا بچوں کو بالکل خبر نہ ہو. آج جو اولاد اور والدین کے رشتے میں بگاڑ آیا، اس کی بہت بڑی وجہ ساری حدوں اور باؤنڈریز کا ختم ہونا ہے. دو طرح سے یہ حدیں ٹوٹتی بھی ہمیں اپنی سوسائٹیز میں دکھتی ہیں، ایک بہت غریب لوگوں میں غربت کے نام پہ، اور ایک بہت امیر لوگوں میں عیش اور نشاط کے معاملے میں. غریب لوگوں کی بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر بہت چھوٹے ہیں، ایک ہی کمرے میں ماں باپ بھی ہیں اور 4-6 بچے بھی ہیں، جس میں کچھ بچے تو واقعی باشعور ہو چکے ہیں اور گود کا بچہ بھی ہے. چھوٹے گھروں کی وجہ سے ہر طرح کا پردہ کھل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ماں باپ ایسی حرکتیں، ایسے سینٹنسز پاس کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ جس کو بچے سمجھ نہ بھی پائیں، لیکن ان کے چھوٹے سے دماغوں کے اندر ایک کوسچن مارک ضرور چھٹ جاتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو بہت ہی زیادہ ماڈرنائز کے طور پہ جب لوگ اتنے ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں کہ ماں بھی بکنی پہن کر اور شارٹس میں اور پھرے، تاکہ ہم تو آئے ہیں یہاں گھومنے پھرنے، اور سی ورڈ میں کپڑوں کا کیا کام، और जब स्विमिंग करनी है तो फिर माँ को भी करनी है और जवान होते हुए बच्चे को भी करनी है। तो उस सूरत में तो वो बात समझ में आने लग गई कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के करीब महरम रिश्तों में जिना होगा, कि जब माँ की भी टांगे खूबसूरत खुली हुई हैं और माँ का भी जिस्म उसी तरह है, बहन का भी वैसे ही है, तो फिर घरों के अंदर बुराइयाँ होंगी। और जब घरों के अंदर बहनों के लिबास और उनके हाल हुलिये उभारने वाले होंगे, तो वो लड़के जो बाहर अपनी आंखों को बचा भी लेंगे यग़ुद्दु मिन अबसारी हिम पे अमल करते हुए, तो बाज़ दफ़ा फिर घरों में बहनें इस हाल हुलिये में होती हैं कि जिससे फिर बाज़ दफ़ा इंसान के जहन में गंदगी आती है। तो इन दो आयात में घर के अंदर रहने के आदाब बता दिए गए, बेतकल्लुफ़ी के नाम पे, बहुत ही मोहब्बत के नाम पे, पुराना ताल्लुक़ है, बच्चे ही तो हैं, क्या हुआ ये तो मेरा बेटा ही है, इसकी तो आंखें बड़ी शर्मीली हैं, और ये तो 10 बेटियों जैसी एक हया है इसमें, कोई खूबसूरत से खूबसूरत जुमले बोलकर आप ऐसे वक्तों में जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ हुक्म दे दिया एक दूसरे के कमरे में भी बिला इजाज़त नहीं जा सकते। यहाँ आप बल्कि घर को कमरा समझ लें तो बात बिल्कुल वाज़े होगी। अमूमन जिस जगह 4-6 लोग रहते हैं तो हर एक के लिए उसके सोने का एक ना एक कमरा होता ही है। फिर इसी तरह कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जिसको हमारे यहाँ तो टीवी लॉन्च कहते हैं, पता नहीं नमाज लॉन्च क्यों नहीं कहते, कुरान लॉन्च कब बनेंगे हमारे घरों में, लेकिन बहरहाल टीवी लॉन्च तो हर एक ने बना ली है। फिर किचन साझा होता है, बाज़ दफ़ा टेरस, बाहर का आने का जाने का रास्ता, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, कि तुम्हारे मुलाज़मों को तुम्हारे घरों में आते जाते कमरे से दूसरे में, तुम्हारे बेडरूम में किचन में आते जाते इजाज़त लेनी चाहिए। बात उस ग़ुलामों से इसलिए शुरू की कि उस दौर में ग़ुलामी आम थी। आज के दौर में जो काम मशीनों से, हूवर से, वैक्यूम क्लीनर से और ग्राइंडिंग मशीनों से करवाए जाते हैं, वो उस दौर में ग़ुलामों से करवाए जाते थे। और ज़ाहिर है कि इंसान होने के नाते उनके अंदर भी जज्बात थे, तो मना कर दिया कि एकदम ना दाखिल हो जाओ, बल्कि इजाज़त तलब करें। और इजाज़त तलब करने के कई तरीके हो सकते हैं, मसलन खांस कर, खंखार कर, नोक करके, एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा करके, कदम बजा कर, कोई ऐसा तरीका कि जिससे कोई मुख्तात हो जाए। इस तरह से घर के मुलाजिम भी इजाज़त तलब करेंगे, वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलम, और वो बच्चे भी करेंगे जो अभी बलूगत को नहीं पहुँचे। हुलम हुलम से है, ख्वाब के लिए आता है, अहलाम इसकी जमा, हम पीछे पढ़ चुके सूरह यूसुफ में, यहाँ मुराद है इससे जो नाइटमेयर्स हैं, गंदे ख्वाब आने लगे, हुलम को पहुँच गए। छोटे बच्चे भी इजाज़त लेंगे तुमसे, कब, मिनकुम सलास मर्रातिन, 3 मर्तबा, 3 वक्त ऐसे हैं कि छोटे बच्चे भी माँ बाप के कमरे में आएंगे तो नॉक करके आएंगे। बस दफ़ा एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी हो चुका होता है, और बड़े बच्चे 4-6 साल 8 साल के करीब भी होते हैं, जब दिल चाहता है रात को दरवाज़ा खोल के माँ बाप के कमरे में आके सोने लगते हैं। जब उठते हैं एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर में घुस जाता है, बहन के चले गए कमरे में, ये पसंदीदा अमल नहीं है, सद्दे ज़राए है ये। 3 वक्त जहाँ जो कहे गए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 3 मौके ऐसे होते हैं कि जो तुम्हारे लिए पर्दे के हैं। फजर से पहले का वक्त क्यों, कबल सलातिल फजर, आप देखिए कि इंसान फजर से पहले बाज़ दफ़ा अपने आप को साफ़ सुथरा करता है, नमाज की तैयारी में गुसल किया जा सकता है, कपड़े बदले जाएंगे, और आज के अलग कमरे और अटैच बात को ना जहन में रखिए, कुरान हर दौर के लिए है और हर जगह इसका काम चलेगा। तो लिहाजा फजर से पहले का वक्त भी पर्दे का वक्त होता है। ऐसे वक्त में एक इंसान दूसरों से अलग रहे, कोई ऐसी चीज़, कोई बात सुनना छुपके, कोई इशारे कनायों में देखना कि जिससे किसी के पर्दे के खुलने का शक हो, तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। फिर दूसरा वक्त है वही ना तदाउन सियाबकुम मिन ज़हीरा, दोपहर, ज़हीरा यहाँ ज़ोहर से है, नमाज ज़ोहर की होती है ना, बिल्कुल सूरज जब चढ़ जाता है ना, तो वो वाला वक्त। और तदा वदा से है, वाउ दुआदैन, वदा हमल उर्दू में हम बोलते हैं, सियाब सौब की जमा, कपड़े उतारने से मुराद है कपड़े हल्के करना, इससे मुराद ये नहीं है कि पूरा नेकेड हो जाना या अपने आप को कपड़ों से आज़ाद कर देना, मुराद ये है कि हल्के कर लें कपड़े, जैसे बाहर जाते वक्त मोटी चादरें होती हैं, या घर में महरमों के साथ रहते हुए सर पे इंसान बड़ी चादर रख लेता है, कोई अलग से मोटा कपड़ा पहनता है, तो उस वक्त अमूमन इसको इंसान उतारता है। आम देखिए कि अमूमन लोग कभी भी सोते हैं तो वो चादर सर पे लेट के तो लेके नहीं सोते ना, इवन घरों में अगर औरतें दुपट्टे ओढ़ती हैं, चादरें ओढ़ती हैं, तो लेटते वक्त वो भी साइड पे कर दिए जाते हैं, तो वही या मुराद है कि कपड़े हल्के करते हो। इसी तरह बाज़ मर्दों को आदत होती है कि घर में जब आते हैं तो बाहर के कपड़े उतार के कोई हल्का फुल्का बुनियान पहन लिया, कोई ट्राउज़र पहन लिया, कि जो घर के अंदर सिर्फ अपने बीवी तक तो ठीक लगता है, लेकिन बाहर के कोई और, इवन बाज़ कपड़े तो ऐसे भी होते हैं कि जो बेटे बेटियों के सामने भी नहीं पहनने चाहिए, हत्ता कि वो होते कपड़े ही हैं लेकिन इतने स्ट्रेची हैं, इतने थिन हैं या इतने फ्लेक्सी हैं कि उसके साथ फिर वो सतर खुलने का डर है, तो का उस वक्त भी बग़ैर इजाज़त के ना आए। और तीसरा वक्त ममिम बाद सलात इशा, इशा के बाद का वक्त। इस वक्त अमूमन सोने की तैयारियां होती हैं और कोई भी निजी काम है वो इस वक्त हो सकता है। दोपहर का वक्त भी बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ों के लिए होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा सलास औरात लकुम, ये तीन जो हैं ये पर्दे के वक्त हैं। औरात का जो लफ्ज़ है ये औरतुन की जमा है, इसका असल मानी क्या होता है, खलल और नक्स। खलल नक्स। औरत को औरत क्यों कहते हैं, क्योंकि औरत भी खलल डालती है लोगों में। सबसे ज़्यादा डी ट्रैक होते हैं मर्द औरत को देकर, यानी औरत के अंदर इस किस्म की कशिश अल्लाह ताला ने रख दी है कि जिसकी वजह से मर्द फिर उसकी वजह से डिट्रैक्ट होते हैं। और औरत छुपी हुई चीज़ को भी कहते हैं हम लोग, ऐसी चीज़ जिसका नुमाया करना मना हो, इसको औरत कहते हैं। अब इस बात को देखते हुए हर बंदा देख सकता है अपने आप को कि क्या वाकई इस तारीफ़ पे मैं पूरी उतरती हूँ। तो ये तीन यहाँ औरतें नहीं मुराद, या नोट कीजिए, अगर इस औरत के लफ्ज़ को लिखें, एक लफ्ज़ है औरत जो हम बोलते हैं, रा पे ज़बर ता पे जज़्म, औरत, ये पाक उर्दू की औरत है। लेकिन यहाँ औरात अगर आपको ये लफ्ज़ आता है तो इसका मानी क्या लिखेंगे, पर्दे का वक्त, छुपाने वाला वक्त, यानी ये एक पर्दे का वक्त है जिसमें तुम अपने आप को अलग करोगे और इसको नुमाया नहीं किया जा सकता। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन्ना, इसके बाद अब बाकी वक्त हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं कि कोई आ रहे जा रहे, वरना तो सारा दिन इजाज़त तलब करने में रह जाए ना। इस्लाम कोई ऐसा बोझ नहीं डालता इंसान के ऊपर कि जिसकी वजह से अपने आप को और दूसरों को बोझल करे, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, बल्कि मुराद ये है कि फिर आने जाने दो, क्योंकि फिर सबको पता होता है कि लोग आ जा रहे हैं, कपड़े भी ठीक पहने होते हैं, हाल हुलिया भी ठीक होता है, कोई ऐसी हरकत भी सरसत नहीं की जाती जब, क्योंकि दूसरे घर में मौजूद हैं लोग, तो लिहाजा इस वक्त के अलावा अगर मुलाजमों को आना पड़े और दूसरों को आना चाहें तो आ सकते हैं। क्यों इजाज़त है, इसलिए कि तवाफ़ूना अलैकुम बादुकुम अलाबाद, तवाफ़ की जमा है तवाफ़ून। क्या होता है तवाफ़, ये वो तवाफ़ है जो हम हज और उम्रे में करते हैं। देखिए तवाफ, तवाफ और तवाफ़ून, यानी ये फ़ाइल का वज़न बनता है, कसरत से आने वाले हैं, यानी एक होता है लफ्ज़ ताइफ, ताइफ़ीन पीछे पड़ चुके हैं वरुक का इस सुजूद, लेकिन तवाफ़ून क्या है कि ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर आते जाते रहते हैं। यही अल्फाज एक हदीस में भी बिल्ली के बारे में इस्तेमाल किए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लैसत बी नजसिन, बिल्ली नापाक नहीं है। क्यों, इन्नहा मिनत तवाफीन अलैकुम अवित तवाफात, क्योंकि ये तुम्हारे घरों में अक्सर से आती जाती है। अब बिल्ली से अगर आप सोचे नजस कर दिया जाए तो बिल्ली तो पता ही नहीं चलता, दबे पाँव आके आपके बर्तनों में मुंह मार जाएगी, तो इसलिए इसको अलाउड करार दिया। और इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं होती जिसमें जर्म्स होंगे, तो वही लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया कि ये अक्सर आते हैं ज़रूरत के लिए घरों में, बच्चों को माँ बाप से ज़रूरतें रहती हैं, नौकरों को घर में काम करना होता है, फिर खुलेआम आ सकते हैं। और कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम, और इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है अपनी आयतें, तो वो इल्म वाला हिकमत वाला है। यहाँ आपको इस्लाम का मिजाज बहुत ही खूबसूरत से दिखेगा ना, घर अमन और चैन के लिए, सुकून के लिए, घर इज्जत और इस्मत के तहफ्फुज़ के लिए, घर के अंदर एक इंसान अपने आप को जितना महफूज समझता है उतना बाहर नहीं समझता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है इब्ने अबी हातिम में, कहते हैं कि तीन आयतें ऐसी हैं कुरान पाक में जिन पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया। और ज़रा सोचें, इब्ने अब्बास कह रहे हैं तो आज के हालात को देख के तो कहेंगे पूरे कुरान में 6,666 आयतें ऐसी हैं जिन पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया, यानी पूरे कुरान पे अमल होता कम दिखता है इल्ला माशाल्लाह। तो वो दिन तीन आयतों का जिक्र करते हैं, कहते हैं उसमें एक आयत तो यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अय्मानुकुम, क्योंकि लोग नाबालिग बच्चों को भी नहीं तालीम देते और सारा वक्त इधर से उधर आते रहते हैं बच्चे। दूसरी आयत व इज़ा हज़र अल क़िस्मत उलुल क़ुरबा, सूरत निसा की आयत है जिसमें मीरास की तकसीम के वक्त वारसों को कहा गया क्यों उन रिश्तेदारों को भी कुछ ना कुछ दे दो जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलने वाला, तो कहा कि लोग अब ये देना पसंद नहीं करते। तीसरी आयत इन अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, सूरत हुजरात की आयत है कि तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तकवे में ज़्यादा है। कहते हैं लोग आजकल मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उसको समझते हैं जिसके पास पैसा हो, मकान, कोठी, बंगला शानदार हो। कहते हैं इन तीन आयतों के बारे में लोगों पर शैतान गालिब आ गया है। और फिर फरमाया मैंने तो अपनी लौंडी को भी इसका पाबंद कर दिया है कि इन तीन वक्तों में बग़ैर इजाज़त मेरे पास ना आया करे। ये अच्छा मैनर होता है, पढ़े लिखे लोगों की ये अलामत है, वो इजाज़त लेते हैं। बस दफ़ा किसी से इजाज़त मांगे तो लोग नाराज़ होते हैं, लो जी हम गैर हो गए, अब हम इजाज़त लेके आए। अच्छा जी अब नौक करके आए, लो क्या हुआ, बस ये कैसा दीन पढ़ने लग गई है कि अब जी देवर भी घर में आए तो खांस के आए। क्यों, देवर है, इंसान तो है ना, मर्द तो है ना, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, बंदा संभल जाता है। पहले इस पर हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि हर बंदा हर वक्त नहीं इस हाल में होता कि दूसरों को पसंद करे, दूसरों को देखे। बाज़ दफ़ा तो इंसान इस काबिल भी नहीं होता कि शौहर के सामने जा सके। तो इन वक्तों में इजाज़त ली जाए, बल्कि हज़रत इब्ने मसूद तो अपनी बीवी के पास भी आते तो इजाज़त ले के आते ताकि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले। एक और रिवायत इब्ने अबी हातिम से, हज़रत इकरमा से, कि दो लोगों ने हज़रत इब्ने अब्बास से रिश्तेदारों की इजाज़त लेने के बारे में सवाल किया कि इस पर लोग अमल नहीं करते, तो उन्होंने फरमाया इन्नल्लाहा सित्तीरुन युहिब्बुस सत्र, अल्लाह बहुत सतर रखने वाला है और सतर की हिफाजत को पसंद फरमाता है। अब देखिए बहुत सादे से हालात थे, दरवाजे तो दरवाजे, पर्दे भी नहीं थे घरों में, बिस्तरे भी नहीं थे। अब अचानक अगर कोई किसी के कमरे में आ जाए, घर में आ जाए, तो कितना मसला हो सकता था। इस्लाम ने उस वक़्त वो बातें सिखा दी कि जो आज के दौर में है तो एक लामुहाला है ही। दरवाज़ा बंद है तो इसका मतलब ये है कि कोई अवेलेबल नहीं, ज़ाहिर अंदर आने से पहले कोई नौक ही करेगा। लेकिन इस्लाम हर बंदे के लिए, हर एक के लिए इस्लाम ने ये चीज़ें रख दी और बता दिया कि इसमें तुम्हारे लिए खैर की बात है। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ घर के अंदर बच्चों की तरबियत की भी बात मिलती है हमें। एक छोटा सा सवाल इस आयत से जहन में आता है कि जबकि बच्चे के अमल उसके बलूगत से पहले लिखे ही नहीं जाते, हदीस है ना, कई दफ़ा कोट हुई है कि कोई बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए उसके अमाल नहीं लिखे जाते, तो फिर इजाज़त लेने का अमल बच्चे के लिए क्यों रखा गया। तो इसका जवाब यह है कि बचपन में आदत पड़ी होगी तभी तो बड़े होकर करेंगे ना। हमें पता है कि बचपन की आदतें जो होती हैं ये पहाड़ में गड़ी हुई होती हैं। इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश कर ले, जितने मर्जी कुरान पढ़ पढ़ा ले, बचपन की आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। एक पूरा आर्टिकल इस पर, एक छोटा सा मैंने एक दिन लेक्चर भी दिया था कि सबसे मुश्किल चीज़ जिसको अपनी जगह से मूव करना है वो कोई पहाड़ नहीं है, वो कोई अलमारी नहीं है, वो इंसान की आदत है। हम तब्दीली नहीं पसंद करते और हम अपने जहन को, अपने सोच, अपनी आदत को एक ऐसी जगह पे ला के फिट कर लेते हैं कि वहाँ से हम हिल नहीं सकते। तो बचपन से इनके मैनर्स कीजिए। और हदीस भी बहुत साफ़ है कि 7 साल का बच्चा हो तो उसको नमाज का चारा दो, फिर उनके बिस्तर अलग करो, हालांकि वो बालिग नहीं होते। तो लिहाजा हमारे माशरों में ये जो आज देखा देखी दूसरों के असूल है ना, कि बच्चों को कुछ ना को, बच्चे बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं जब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी होती है और वो मजबूत हो चुके होते हैं अपनी आदतों में, तो फिर हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। इस्लाम ने तरबियत अतफ़ाल के जो स्टेप्स दिए हैं वो भी एक लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेयर किए थे सबके साथ, कि किस उम्र में प्यार करो, किस में लाड देखो, किस में सख्ती करो और फिर किस में दोस्ती करो। हमारी बिल्कुल उल्टी गंगा है। पहले सबसे लाड देखते हैं, सर पे बच्चा चढ़ चुका होता है, पहले छोटे को तो खूब मारते पीटते हैं, फिर ज़रा सा समझ आने लगता है बड़ा, जैसे स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसके नखरे देखने शुरू हो जाते हैं, जब उसकी आदतें खुद बिगड़ जाती हैं और जिस उम्र में उसे दोस्ती करने का वक्त होता है उस वक्त हम चिढ़ के उसको अपने से दूर दूर करते हैं, जहाँ वो बैठे उसको डांटना शुरू कर दिया, दूसरों में उसकी बुराइयाँ कर दी। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अगर आज भी हम बच्चों की तरबियत उसी नहज पे करें जिस पे इस्लाम ने करने का हुक्म दिया, तो इंशाल्लाह इससे खैर ही खैर आएगी और फिर इससे फ़ायदा होगा। फिर अब अगली आयत में थोड़ा सा इसमें मज़ीद एक हमें इशारा मिलता है, क्या वह इज़ा बलगल अतफ़ाल मिनकुमुल हुलम, और जब तुम्हारे बच्चे भी हुलम को पहुँच जाएँ, यानी बड़े हो गए, जवान हो गए, अब उन पर भी वही एक काम होंगे जो आम मर्दों के थे, पीछे गुजर चुके, यानी अब वो बालिग हैं, हुलम पे पहुँच चुके, अब क्या करें, फल यस्ताज़िनु कमस्ताज़ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो वो भी इजाज़त तलब करें जैसे इजाज़त तलब करते हैं वो लोग जिनका जिक्र पहले हुआ। कहाँ हुआ, आयत नंबर 26-27 में, यानी बच्चे जब बड़े हो गए तो 27, 28, 29 आयत में जिनका जिक्र था, अब वो भी ये करेंगे। और आप देखिए कि जब छोटे बच्चों को ये हुक्म है तो बड़ों को तो बदरजा उला ये हुक्म है कि वो इजाज़त लेकर आएं, माँ के कमरे में आ रहे हैं, बहन के पास आ रहे हैं, बिल्कुल करें। हुलूम का जो लफ्ज़ है ना, इसी से हेल्म है। हेल्म किसको कहते हैं? अक़ल को कहते हैं, मतानत को कहते हैं, वक़ार, संजीदगी, समझदारी। अब पता कैसे चले कि बच्चा बालिग हो गया कि नहीं? तो इसकी कुछ अलामतें होती हैं। लड़कियों में तो बिल्कुल साफ़ है पीरियड्स की जो कैफियत है, बस दफ़ा उम्र के फ़र्क में और हालात और फूड और खाने पीने के फ़र्क में इसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अमूमन लड़कियों की बलूगत जो है उनकी पीरियड से शुरू हो जाती है। लड़कों की बलूगत जो है उसमें नंबर एक इख्तलाम है, जो खुद वो खुद ही जानते हैं, और माँ बाप को, बच्चों को, ख़ास तौर पे जिनके बेटों वाले माँ बाप को बिल्कुल इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए। बस दफ़ा शर्म और हया का नाम लेके बेटों को तो बिल्कुल ही नहीं बताया जाता, लड़कियों को तो फिर को माँ खुद ना बताए, कोई खाला से कहलवा दिया, कोई कुछ। ये भी एक अजीबोगरीब कहानी है कि सारा कुछ माँ आपका करे, माँ आपको पाले पोसे, और ऐसे मौक़ों पे माँ बेटी में ऐसी झिझक पड़ जाए कि फिर या तो वो बेचारी बाहर से पूछे या कुछ ना करे, रोती धोती रहे, या फिर छुप छुप के सहेलियों से बातें करे। ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। तो माओं को इस तरह शाय नहीं होना चाहिए, आम तरीके से जैसे आम बातें होती हैं इस तरह ये भी चीज़ बताई जाए। हम ऐसी चीज़ों को बास हवा बना देते हैं बास दफ़ा, और फिर बात करके खीखी खीखी हंसने लगते हैं लोग। कोई बाथरूम में जाने की बात सुन के हंसता है, दिन में कई बार हर एक जाता है टॉयलेट में, सबको पता है यूरिन पास करते हैं। तो अगर पीरियड्स की कोई बात होगी तो उसमें हो क्या गया है? जिस्म से गंदगी निकली, पस निकली, खून निकलता है, जख्मों से भी निकलता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको इतना इशू बना के बास दफ़ा इन चीज़ों को फिर बहुत ग्लैमराइज कर दिया जाता है। फिर लड़कों में बाप की जिम्मेदारी है। लड़के जब आपको फील हो कि इस उम्र के हो रहे हैं, उसकी कुछ निशानियां दिखती हैं, बाल चेहरे पे आने लगते हैं, आवाज़ बदल जाती है, थोड़ी सी उनकी तबीयत बदलती है, कुछ उनका रुझान लड़कियों की तरफ होने लगता है। कोई कहता है 15 साल की उम्र है, कोई कहता है 18 साल की है, कोई 14 की है, एक दलील भी दी जाती है, 15 साल वाली राय देते हैं, जो ये ज़्यादा मुवाफिक दलील है कि एक मौके पे एक सहाबी को जंग में इजाज़त नहीं मिल रही थी जाने की, और जब वो 15 साल के हुए तो मिल गई। तो पहले कहा नहीं, अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, फिर बड़े हुए तो मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि हर जगह का फ़र्क अलग होगा, लेकिन एक बैलेंस के लिए 14 से 15 साल की उम्र जो है वो होती है, वरना तो यहाँ देखिए 7-8 साल के बच्चे भी जो हैं वो भी औरतों के मैटर्स को समझने लगते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन इसका क्राइटेरियन आप खुद देख सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है, बच्चों वाली हरकतें करता है या बाबों वाली हरकतें करता है। कुछ बहुत छोटे होते हैं और उनका रुझान बहुत ही ख़राब होता है गंदी चीज़ों में देखना, करना, कराना, और कुछ बड़े भी हो जाते हैं तो बिल्कुल बच्चे ही बने होते हैं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन लड़का भी बच्चा है और कौन बड़ा हो चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उम्र का फ़र्क रखे बगैर हर इलाके, गजा, माहौल इसको देखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये बालिग हो चुके हैं। फिर आप देखिए कि अरबों में चूंकि गर्मी बहुत होती थी तो कपड़ों के हल्का करने का तذکرہ जो है वो बहुत जगह मिलता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह सुबहान ताला ने ये अहकामात किसी को बोझ में या मुश्किल में डालने के लिए नहीं दिए, इसके अंदर हिकमत है, तुम्हें ही फ़ायदा होगा इसके अंदर, इस पे अमल करने से। अब औरतों को पीछे अहकामात मिल चुके, सूरत अल-अहज़ाब नाजिल हो चुकी थी, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि औरतों घरों से बाहर जाते वक्त ज़रूर ज़रूर कोई और चीज़ पहनो, कोई और कपड़ा तुम्हें लेना होगा अपने ऊपर। अब यहाँ आयत नंबर 60 में उसकी एक एक एक्सेप्शन है। इस्लाम का हुसन ये है कि जब कोई पाबंदी लगाता है तो जब वो हालात बदल जाते हैं तो उस पाबंदी को भी नरम कर दिया जाता है। आइए देखते हैं। वल क़वाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहन फलैस अलैहिन्न जुनाहुन अन यदान थियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना वअन यस्तअफिफ्न खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम। बड़े गौर से सुनने की आयत है। और बूढ़ी खाना नशीन औरतें जिन्हें आरजू न हो निकाह की, तो इन पर कोई गुनाह नहीं अगर वो रख दें अपने ऊपर के कपड़े, बशर्ते कि वो जीनत करने वाली ना हो अपनी आराइश की, और इनका इससे भी इज्तनाब करना इनके लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। सूरत अल-अहज़ाब में आयत आ चुकी थी युदनीन अलैहिन्ना पे, पीछे हमने सूरत नूर ही की आयत नंबर 30-31 में पढ़ लिया के वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना से लेके आगे उसकी डिटेल थी। अब हुआ क्या कि एक औरत सारी ज़िंदगी इन चीज़ों पे अमल करती रही, अब वो इस एक ऐसी उम्र पे पहुंच चुकी है कि जब उसके अंदर बीमारियां आ चुकी, कमज़ोरियां हो गईं, आप उसके अंदर इतना रुझान नहीं रहा इन चीज़ों का, बनने का, ठनने का, निकाह की हाजत नहीं, ख्वाहिश नहीं, यानी बिल्कुल जिसको सोच के जिन में बुढ़िया है, बुढ़ी कोई ऐसी अम्मा जैसी कैफियत, बिल्कुल सीधी सादी औरत के जो बस घर से निकलने से पहले ज़रा भी नहीं इस चीज़ की फिक्र करे कि मैंने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। अगर ऐसी औरतें, वल कवायद का लफ्ज़ समझ लीजिए, वल कवायद का लफ्ज़ यहाँ जो है कायद की जमा है, कायदतुन की जमा नहीं है, कवायद जमा है, इसका वाहिद कायद है, कायदतुन नहीं है। ता तानीस की इसके लिए हजफ कर दी गई ताकि पता चले कि बैठना बुढ़ापे की वजह से है, वरना तो हर बैठी हुई औरत कायद है, जैसे आप मैं हम सारे इस वक्त अरबी ग्रामर की इतला से कायदतुन है क्योंकि हम सब बैठे हुए हैं, तो कायद का ये ऐसे ही जैसे अरबी में इमरातुन हामिलुन कहते हैं हामिला को, हामिला नहीं कहते वरना तो हर बोझ उठाने वाली, तो हामिल कहते हैं प्रेग्नेंट औरत को, ताकि पता चल जाए कि इसने अपने पेट में बच्चे को रखा हुआ है। तो कवायद से मुराद वो औरतें, नंबर एक जो बच्चे जनने से आजिज़ आ गईं, दूसरी बात इनको पीरियड्स आने बंद हो गए, तीसरी बात यह है कि जब कोई उसे देखे तो उसकी पीराना साली या उसके बुढ़ापे या उसकी कसरत उम्र का होने की वजह से लोग उससे कोई मोहब्बत महसूस ना करें, यानी रغبत ना हो जिसको देखने से किसी के दिल में। फिर ऐसी औरत जो है वो अपनी हर किस्म की आराइश से बिल्कुल बेनियाज हो। फिर अगली इसकी पहचान लिखिए कि वो घर में या घर से निकलते वक्त उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंसान घर में भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, कहीं जाते हुए भी पहन लेता है, तो अगर ऐसी औरत जो इन सारी चीज़ों में अपने आप को पाबंद कर ले, तो अगर वो अपने बाहर के कपड़े, या नोट कीजिएगा लफ्ज़ जो आया है वो क्या है, कहीं यदाना सियाब हुन्ना, अब क्या सारे कपड़े उतारने हैं? नहीं, सिले हुए कपड़े और अनसिले कपड़े का फ़र्क होता है। यहाँ मुराद है वो मोटी चादरें जो युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबी भी हिन्ना की सूरत में पहनी हुई थी, अब उनको उतार दिया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। शर्त क्या है? गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। क्या लफ्ज़ है इसके अंदर? बुर्च। यही लफ्ज़ आगे हम पढ़ेंगे सूरत अलहज़ाब में, वला तबर्रज न तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला। तो बा रा जीम बुर्च कहते हैं बुलंदी को, और मुतबर्रिजा औरत कौन होती है जो खूब कपड़े जेवर पहन के बुलंद होती है ना, देखिए प्रोमिनेंट तो होता ही है ना बंदा, जब भी आप कहीं भी जाएंगे बहुत फैंसी चमकते साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो एकदम नज़र तो उठेगी ना, तो ये औरतें अपनी आराइश को जाहिर करने वालियाँ ना हों। गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, नोट कीजिए, जीनत करना नहीं, जीनत को जाहिर करने वालियाँ ना हों। देखिए इंसान की कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, कोई आप क्रीम लगाते हैं हाथों को वो आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके हाथ नरम हो, चेहरे पे आपने क्रीम लगाई ताकि मुंह धोया तो खुश्की ना हो, ये भी जीना के साथ मुतबर्रिजा नहीं हुई, ये तो अपने लिए कर रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इस ज़रूरी चीज़ के ऊपर फिर लगाई जाती हैं, बस आप देखिए कि कंघी तो हर एक को करनी है, क्या आप दिखाने के लिए लोगों को कंघी करते हैं? नहीं, आप इसलिए करते हैं कि आपकी नींद खुल जाए, आप ज़रा समेटे हुए अपने आप को फील करें। अब कंघी तो आपने करनी थी, वो कर ली, तेल लगा लिया, लगा लिया, लेकिन अगर आप उन बालों में आप कुंडल डाल रहे हैं, आप उसके अंदर कोई क्लिप्स लगा रहे हैं, पिन्ने लगा रहे हैं, उसकी बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं, ये है मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। तो बात वाज़े है कि कपड़े तो वो भी पहनेगी, साफ़ कपड़े वो भी पहनती हैं, कंघी करती हैं वो भी करेंगी, अगर मुंह पे कोई क्रीम लगाती हैं वो भी लगाएंगी, लेकिन उनका हाल ये ना हो कि वो इस उम्र में भी दूसरों के लिए फितना बनी हुई हो। बाज़ औरतें सिर्फ इस पे अमल करने के लिए अपनी उम्र बड़ी करने पे तैयार हो जाती हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि मेरे पे तो पर्दा ही नहीं फ़र्ज़ क्यों, और रखती थी कोई वो मेरे हाले 30 की, मुझे सही याद नहीं लेकिन उम्र कुछ ऐसी थी, कहा भाई क्या हुआ मसला, कहने की वो मेरा तो ऑपरेशन हो चुका है, बच्चे तो मैं पैदा कर नहीं सकती। मैंने कहा फिर सबको बताएंगे, जहाँ जाएं जिस मर्द को से कहें मुझे मत देखो मेरा ऑपरेशन हुआ। सोचिए, अक्ल कोई नहीं बात आती, यानी बास ने इसमें जो बच्चों के पैदा करने को शर्त लगाई है, ये शर्त लाजमी नहीं है। बस तो यंग औरतें भी नहीं बच्चे पैदा कर सकती, डॉक्टर कह देते हैं उनको नहीं हो सकते, कह सकते हैं ना, तो बच्चे का पैदा होना, बल्कि मीनोपॉज जो 40s में मोस्टली शुरू हो जाता है वो भी इसमें नहीं आता। क्यों? कि आपकी ये कैफियतें आप जानते हैं, इसका सरासर ताल्लुक इंसान के तकवा से है। याद रखें कि जितना तकवा होगा, एक औरत एक सहाबी को मिली, सहाबी थे गालिबन इब्ने मसूद थे या अब्दुल्ला बिन अब्बास, तो देखा एक बूढ़ी अम्मा कमज़ोर हड्डियों की गठरी और चादरों में खुद को छुपा के बैठी हुई है। तो वो उनके पास गए और कहने लगे, अम्मा तुम्हारी ये उम्र आ गई है तो क्या तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी कि फलई साले हिन्न जुनाहुन अदा न सियाबा हुन्न गैर मुतबर्री जातिम भी सीना। कहने लगी पढ़ी है। तो कहा फिर इतनी चादरों में अपने आप को क्यों समेटा हुआ है। तो कहने लगी क्या आपने इससे अगला हिस्सा नहीं पढ़ा कि वहीं यस्ताफिफ न खैरुल्लहुन कि है रुख्सत लेकिन फिर भी बच जाए तो बेहतर है। और आज का जो अल्लाह माफ़ करे फितनों का दौर है, जवानों के पास तो अपनी जवान जज्बात को निकालने के कई ज़राए हैं, बूढ़ों पे तो और मुश्किल है। देखिए कि आप सोचिए कि जवान लड़का लड़ जवान लड़की को देख के खुश होगा तो कोई बूढ़ा बूढ़ी औरत को देख के नहीं खुश होगा। और आप उस उम्र में जहाँ 70 80 90 के बाबा जी हो गए, आप दिल की भी बीमारी लगी है, दिल वैसे ही कमज़ोर है। आप 70 80 साल में पूरे बैन ओढ़ के ठेप के जाते हैं, उन पे तो बड़ा जुल्म होगा। फिर क्या बनेगा, वो बाबा जी तो पता नहीं किसी का हुस्न का बोझ बर्दाश्त कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते। वाकई बात औरतें 70 80 में भी उनके दिल जवान होते हैं। कुछ औरतें तो बूढ़ी रूहें, वो तो जवानी में भी बूढ़ी रूह हैं। तो कुछ औरतें माशा, और ये बुरी बात नहीं है, वल्लाह ही ये बुरी बात नहीं। अगर 70 80 साल की औरत को अगर आप सुर्ख रंग का सूट पहने देखें, शरण कोई कबाहत नहीं। ये तो हमारे हैं ना बुढ़ी गोड़ी लाल लगाम, बहुत जुल्म की बात है। हमारे यहाँ एक ये भी अजीबो गरीब कहानी होगी कि बूढ़े को तो पैन नहीं स्किन कलर है, या ग्रे कलर है, या स्किन ऑफ वाइट है, और उसको मारते हैं कि अब जाओ जल्दी से दुनिया से, तुम्हारा रंगों का हिस्सा ख़त्म हो चुका। कभी ना करें, आपके दिल बड़े होने चाहिए, बड़ों को बल्कि और शोख रंग दें, उनका दिल खुश रहे, वो खुश, वो कपड़े पहनना चाहते हैं पहनने दें, उनको जेवरों से खुशी होती है पहनने दें। आप कहते हैं अम्मा इस उम्र में आप पहनेंगी, या अब आपकी उम्र है सुरख रंग पहनने की, नहीं मुझे ही दे दो, यानी मेरी तो अभी है ना। तो कभी आप भी तो बूढ़े होंगे। तो बिला ज़रूरत की गैर फितरी पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, खूब पहनने दें, ओढ़ने दें, उनको खुश रहने दें। लेकिन अगर किसी औरत में इस तरह पहनने ओढ़ने का है, कोई हरज नहीं, लेकिन फिर उस पर वही सारे अहकाम होंगे जो कि आम औरतों पर होते हैं जवान में। चलिए इसको तो हमने पढ़ लिया, वल्लाहु समीउन अलीम। इधर से एक और क्या बात पता चली, देखिए बूढ़े होके क्या उतारेगी औरत जो जवानी में पहनती थी। तो किस चीज़ की दलील हुई कि जवान औरतों को फिर कुछ पर्दा करना चाहिए कि नहीं, क्या कपड़े तो नहीं उतार देगी ना। पता चला इस आय से एक रिवर्स सेक्शन, एक साइमल्टेनियसली बात पता चलती है कि जवानी में औरत कुछ पहनेगी ना पर्दे के नाम पे, तभी तो बुढ़ापे में उतारेगी। तो जो जवानी में पहने ना, फिर वो बुढ़ापे पे क्या उतारेंगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तकवा दे, खैर दे, आफियत दे। और जितनी हया ज़्यादा होती है, इंसान उतना ही अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है।